इशिका इस वक्त ईशानी की जगह तरुण के साथ राजवंश बिलाई हुई थी। सबको यही लगता था कि इशिका मर चुकी है। अंदर इशिका की लाश अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन राजवंश फैमिली को सांत्वना देने के लिए आ रहे थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही इशिका ने मास्क लगाया और रूही को अपनी गोद में ले लिया। उसे वहां कहीं भी अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे जाने पर सिक्योरिटी के साथ पृथ्वी खड़ा हुआ था, जो हर एक को चेक करने के बाद ही अंदर जा रहा था। पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए तरुण ने इशिका का हाथ पकड़ लिया। पृथ्वी तरुण को सवालिया नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था। तरुण ने सफाई देते हुए कहा, मिसेज राजवंश के साथ बहुत बुरा हुआ। इतनी कम उम्र में वो भगवान को प्यारी हो गई। ये मेरी पत्नी है, वो उनकी क्लासमेट थी, बस इसीलिए वो यहाँ आई हैं। पृथ्वी ने इशिका की तरफ अजीब नजरों से देखा। उसने मास्क लगा रखा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी। राजवंश टेरिटरी के मेन विला के हॉल में आगे इशिका की लाश रखी हुई थी। उसके आसपास राजवंश फैमिली के लोग बैठे हुए थे। इशिका की नज़र सबसे पहले नकुल, प्रशांत और उर्वशी पर गई, जो वहां दुख जताने के लिए बैठे हुए तो थे, लेकिन इशिका अच्छे से जानती थी कि उसके मरने पर उन्हें खुशी ही हुई होगी। फिर उसकी नज़र नक्श की तरफ गई, जो चेहरे से मायूस लग रहा था, मानो उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इशिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इशिका ने उन्हें इग्नोर किया और इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए अपने मन में कहा, माँ कहाँ गई है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। क्या वो मेरी मौत का सुनकर फिर से बेहोश हो गई है? अभिमन्यु भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इशिका वहाँ खड़ी अभिमन्यु और राधिका को देखने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कानों में कुछ लोगों की बात पड़ी। मिस्टर राजवंश अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सुना है वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये लाश उनकी पत्नी की है। डीएनए रिपोर्ट के बाद जब सब सामने आ ही गया है, तो न जाने मिस्टर राजवंश को कौन से सबूत की ज़रूरत है। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सुना है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और इतनी कम उम्र में वो उन्हें छोड़कर चली गई। इशिका को उन सब की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे अभिमन्यु के लिए बुरा महसूस हो रहा था। उसने देखा कि तरुण उसके पास खड़े रहने के बजाय इधर उधर बड़े लोगों की तरफ ताक रहा था। इशिका ने मौका देकर रूही को माया को पकड़ाया और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। इशिका जानती थी कि उसे कहाँ जाना था। वो सबसे छुपते हुए सीधे वसुधा के विला में पहुंची। निवेदिता वहां एक हाउस हेल्पर से बात कर रही थी। मिसेज राजवंश ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वो अपनी बहू के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मिस्टर राजवंश भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि इशिका मैडम अब नहीं रही हैं। बाहर लोग उनके बारे में बातें बना रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, हाउस हेल्पर ने जवाब में कहा। वो दोनों ही इशिका के मरने का अफसोस जता रही थी। उनकी बातें सुनने के बाद इशिका सीधा अभिमन्यु के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए वो पीछे से बालकनी में चली गई थी। उसने देखा अभिमन्यु फाइलों में उलझा हुआ था। वहां जमीन पर सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे। ये जब भी परेशान होता है स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। जब जानता है मैं जिंदा हूं तो फिर खुद को तकलीफ देकर क्या फायदा है? बस थोड़े दिन ही तो अलग रहना है, इशिका ने अपने मन में कहा और फिर अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहा था। अभिमन्यु को समझाने के लिए इशिका ने खिड़की से अंदर जाने का सोचा, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो निवेदिता थी। उसने दरवाजा खटखटाकर कहा, सर प्लीज बाहर आइए, मैडम की लाश का अंतिम संस्कार होना बाकी है। आप नहीं गए तो सबको यही लगेगा कि आपको उनसे प्यार नहीं था। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा वो मेरी इशिका नहीं है, अभिमन्यु ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया। निवेदिता ने कुछ पल रुककर आगे कहा, दादी यहाँ आ रही हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। वसुधा का नाम आने पर अभिमन्यु को उठकर दरवाजा खोलना ही पड़ा। वसुधा ने उसे देखते ही सुबकते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी बहुत इज्जत भी। तुम क्या चाहते हो कि आज आखिरी बार वो इस घर से बेइज्जत होकर निकले? उसका पति तक उसके साथ नहीं जा रहा है। दादी मैं आपको कैसे समझाऊं, वो मेरी इशिका नहीं है, अभिमन्यु ने भारी आवाज़ में कहा। हाँ मैं जानती हूँ, वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी ख़राब हो गई है। तुम अच्छे से जानते हो, पहचान के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया था। टेस्ट रिजल्ट में यही सामने आया है कि वो राधिका सिंघानिया की बेटी है। अपनी तसल्ली के लिए तुमने दो बार टेस्ट कराया था, जाँच में कोई हेराफेरी नहीं हुई, वो हमारी इशिका ही है, वसुधा ने जवाब दिया। वसुधा की बात सुनकर इशिका को झटका सा लगा। पहले उसे लगा ईशानी और राधिका का डीएनए मैच करना भी किसी साजिश का ही हिस्सा था, लेकिन दो बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से माने का सुनकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, वो डेड बॉडी तो ईशानी की है, फिर उसका डीएनए माँ के डीएनए से कैसे मैच हो सकता है? और क्या छुपाया है तुमने ईशानी मुझसे? क्या ईशानी मेरी बहन है? अगर ऐसा है तो माँ ने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? इशिका के दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे। वहीं वसुधा के ज्यादा फोर्स करने पर अभिमन्यु को बाहर जाना ही पड़ा। इशिका अभिमन्यु से बात करना चाहती थी, वो दूसरी तरफ पलटती। उससे पहले ही किसी ने उसका मुंह कसकर बंद कर लिया था। इशिका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कान में एक सर्द आवाज आई, तुम इस तरह सबके सामने नहीं जा सकती हो, लोग तुम्हें ईशानी का कातिल समझेंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति भी खतरे में आए तो जाकर सबको बता देना कि तुम जिंदा हो। उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें उससे दूर रहना होगा इशिका सिंघानिया। वो शख्स जो भी था इशिका की सच्चाई जानता था। इशिका पलटकर उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन तभी वो तेजी दिखाते हुए बालकनी से कूद गया था और फिर भीड़ में खो गया। इस वक्त इशिका के दिल की धड़कनें तेज थी। कौन था वो इंसान? क्या वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था? मैं अभिमन्यु से दूर क्यों रहूंगी? और मैंने किसी को नहीं मारा है, इशिका घबराई हुई आवाज में बोली। इशिका जल्दी से वहां से बाहर निकल आई थी। उसने देखा रूही को लेकर माया गाड़ी में बैठी हुई थी। वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी और रूही की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। इशिका रूही को वहां इसीलिए लेकर आई थी ताकि ईशानी को उसके पास लेकर जा सके, लेकिन इतनी भीड़ में वो रूही को आगे नहीं ले जा पाई। माया भी उसे लेकर वापस आ गई थी। इशिका ने रूही को गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगी तो माया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इस छोटी बच्ची को तुम कहां लेकर जा रही हो? जानती हो ना वहां अंदर लोग रो रहे हैं, इससे इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, तभी मैं इसे वापस लेकर आई थी। इशिका ने माया का हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे रूही को लेकर सीधा ईशानी की डेड बॉडी की तरफ जाने लगी। तरुण ने उसे ऐसा करते हुए देखा, वो उसे रोकने के लिए उसके पास गया। इशिका ने उसे देखकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं शोर मचाऊंगी और फिर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चुपचाप वही करो जो करने आए थे। इशिका की बात सुनकर तरुण के कदम वहीं रुक गए थे। वो रूही को लेकर ईशानी की डेड बॉडी के पास आई। सच में ईशानी की बॉडी बुरी तरह फूल चुकी थी। उसे देखकर इशिका की आंख से आंसू का कतरा बह गया तो वहीं न जाने क्यों रूही की आंखों में भी आंसू थे।
इशिका ने रूही को अपने सीने से लगा लिया था। उसने ईशानी की तरफ देखकर अपने मन में कहा, तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं ईशानी, हमारा डीएनए मैच करता है, इसका मतलब तुम मेरी सगी बहन हो। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तो ये तक नहीं जानती कि हमारे ऊपर कौन सा खतरा है, पर एक वादा करती हूँ कि मेरे ऊपर चाहे कितने भी खतरे क्यों ना हो, मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगी। इशिका की जान इशिका को बचाते हुए गई थी। उसे इस हाल में देखकर इशिका की आंखों में आंसू थे। इशिका वहां खड़ी ईशानी की लाश को देखकर रो रही थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी बच्ची, क्या ये तुम हो? वो केशव सिंघानिया था। उनकी आवाज सुनकर इशिका के कदम वहीं रुक गए थे। इशिका ने मास्क लगा रखा था और साथ में कॉन्टैक्ट लेंस भी, फिर भी उन्होंने उसे पहचान लिया था।